19 मार्च दिन सोमवार, नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। रूस पर फिर चला पुतिन का जादू, एक बार फिर जीता राष्ट्रपति का चुनाव।
Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России.
क्या है राष्ट्रपति पुतिन की जीत के मायने, करेंगे विश्लेषण।
इसके मायने ये है कि रूस में कोई बड़ा नेता बचा नहीं, जो उनके सबसे बड़े ओपोनेंट थे उनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया।
कोलंबो में निधास ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को हराया। सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। व्लादिमीर पुतिन का एक बार फिर रूस का राष्ट्रपति बनना तय हो गया है। हालांकि पुतिन की जीत पहले से ही निश्चित बताई जा रही थी। भारी मतों के साथ जीत सुनिश्चित होने के साथ ही पुतिन ने मॉस्को में अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने मतदाताओं का धन्यवाद देते हुए कहा कि रूसी लोगों ने उन्हें वोट देकर उनके और उनकी नीतियों के प्रति भरोसा और उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा, राजधानी में इस सर्द शाम में इकट्ठा होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग आज मॉस्को में इकट्ठा हुए हैं और विशाल देश के अपने समर्थकों का इस नतीजे के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। सोशल मीडिया फर्म फेसबुक ने कथित तौर पर 5 करोड़ यूजर्स का प्रोफाइल चोरी करने के मामले में व्यापक जांच कराने की घोषणा की है। आरोप है कि अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी टीम के साथ काम कर रही एक एनालिटिकल फर्म ने ये डाटा चोरी किया था। रिपब्लिकन सांसदों समेत अमेरिका के कई राजनेताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि वो साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखल के आरोपों की जांच को बंद करने की कोशिश न करें। इस मामले की जांच स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर कर रहे हैं। ट्रंप के निजी वकील ने इस जांच को बंद करने की मांग की थी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जोर देकर कहा है कि ब्रिटेन के पूर्व जासूस को जहर देकर मारने की कोशिश में उनके देश का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि रूस रासायनिक हथियार बनाने का कोई कार्यक्रम चला रहा है। पुतिन ने कहा, हमने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की देखरेख में अपने सभी रासायनिक हथियार नष्ट कर दिए हैं, बल्कि हम ऐसा करने वालों में सबसे पहले हैं। हमारे दूसरे साझेदारों ने भी रासायनिक हथियार नष्ट करने का वादा किया था, लेकिन वो अभी अपना वादा पूरा नहीं कर सके हैं। ये थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। नाइजीरिया ने अफ्रीका के मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते से हटने का ऐलान किया है। अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले नाइजीरिया ने कहा है कि वह इस समझौते पर पहले अपने देश के कारोबारियों की सलाह लेगा। नाइजीरिया की लेबर यूनियनों ने इस समझौते का विरोध किया था और कहा था कि इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। तेलुगुदेशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस लोकसभा में आज मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती हैं। वाईएसआर कांग्रेस के वाईवी सुब्बा रेड्डी ने लोकसभा सचिवालय को आज की संशोधित कार्यसूची में उनका नोटिस रखने के लिए पत्र लिखा है। वहीं टीडीपी ने भी अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की ने कहा है कि वह अपनी सेना को सीरिया के कुर्दिश लड़ाकों के नियंत्रण वाले इलाकों में भी भेजेगी। तुर्की ने कहा है कि अफरीन में विद्रोहियों पर जीत हासिल करने के बाद उसने ये निर्णय लिया है। तुर्की सैनिकों और उनके सीरियाई सहयोगियों ने दावा किया कि अफरीन में उन्हें कुर्दिश लड़ाकों के हल्के फुल्के प्रतिरोध का ही सामना करना पड़ा। कैटालोनिया के अलगाववादी नेता कार्लोस पुजीमोंट ने कहा है कि कैटालोनिया स्पेन से पूरी आज़ादी लेने के बजाय स्वीडन जैसे संघीय स्वायत्तता पर राजी हो सकता है। पुजीमोंट जिनेवा में एक मानवाधिकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत संदीप सोनी के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत रूस से, जहां मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति का चुनाव एक बार फिर जीत गए हैं। व्लादिमीर पुतिन पिछले 18 वर्ष से रूस की सत्ता पर काबिज हैं। पुतिन की शख्सियत पर कार्यक्रम में आगे करेंगे हम चर्चा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट सुनवाते हैं।
व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर 6 साल के लिए रूस के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। शुरुआती नतीजों के बाद मॉस्को में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने पिछले कुछ वर्षों में हासिल की गई उनकी उपलब्धियों को पहचाना है। पुतिन कह रहे थे कि इस एकजुटता को बनाए रखना बहुत जरूरी है और हमें एक टीम के रूप में काम करने की जरूरत है। हमें अपनी महान मातृभूमि के बारे में सोचना है, हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। हम एक साथ मिलकर रूस के लिए काम करना शुरू करेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए रेस शुरू होने से पहले ही व्लादिमीर पुतिन को विजेता के रूप में देखा जाने लगा था और इसकी वजह थी कि मुख्य विपक्षी नेता अलेक्सी नावालनी को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। पुतिन की इस जीत को मतों के मामले में साल 2012 से बड़ी जीत बताया जा रहा है, लेकिन साल 2015 में मारे गए विपक्षी नेता बोरिस नेमत्सो की बेटी झना नेमत्सोवा को लगता है कि ये असल चुनाव नहीं था। झना नेमत्सोवा कह रही थीं कि हम इसे वास्तविक चुनाव नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कोई भी असल प्रतिद्वंद्वी नहीं था। प्रमुख विपक्षी नेता अलेक्सी नावालनी को पहले ही चुनाव में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। बाकी जितने भी उम्मीदवार थे, मुझे लगता है वो सभी स्वतंत्र नहीं थे और क्रेमलिन से उनके तार किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। इसमें शायद ही शक हो कि आज के रूस में पुतिन सबसे लोकप्रिय शख्सियत हैं और उनके चाहने वाले उनकी जीत को उनकी नीतियों की जीत मानते हैं। रूसी नागरिक अमत ज्ञानदायेव का कहना है कि ये हमारी सरकार के लिए बहुत जरूरी जीत थी। आज मैं व्लादिमीर पुतिन का समर्थन करने के लिए आया हूँ। मैं समझता हूँ कि वो सबसे योग्य व्यक्ति हैं। एक अन्य रूसी नागरिक मैक्सी शामस्की ने कहा कि पुतिन ने अपनी पूरी जिंदगी और पिछले 20 साल में अपनी पूरी ताकत हमारे देश के विकास पर लगा दी। पुतिन की जीत एकदम बेदाग हो ऐसा नहीं है। कई मतदान केंद्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग में गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। लेकिन रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रमुख इला पाम्फिलोवा किसी तरह की गड़बड़ियों से इनकार करती हैं। पाम्फिलोवा कह रही थीं कि चुनाव प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है और मतदान केंद्रों की वीडियो कैमरों से निगरानी की गई है, पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की गई थी। वो इस बात पर बेहद करीबी नजर रखे हुए थे कि मतपत्रों को सही तरीके से मत पेटियों में डाला जाए। पुतिन ने साल 2000 में पहली बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद रूस पर पूरी तरह से अपना राज कायम कर रखा है। घरेलू राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच, वो अपने प्रतिद्वंदियों को हावी होने का कोई मौका नहीं देते और इन चुनावों में भी उन्हें अपने 7 प्रतिद्वंदियों को हराने में खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी।
रूस पर फिर चला पुतिन का जादू, एक बार फिर जीता राष्ट्रपति का चुनाव। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुन रहे थे आप दिनेश उप्रेती की जुबानी। कार्यक्रम में आगे करेंगे चर्चा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पुतिन की भूमिका पर, लेकिन पहले मेरे सहयोगी पवन सिंह अतुल बताएंगे आपको व्लादिमीर पुतिन की शख्सियत के बारे में।
Владимир Владимирович Путин.
व्लादिमीर पुतिन पिछले 18 साल से रूस की राजनीति में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में वर्ष 1952 में जन्मे पुतिन ने सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। रशियन टेलीविजन पर जबरदस्त मर्दाना छवि में नजर आने वाले पुतिन की सही मायने में राजनीतिक शुरुआत 1999 में हुई, जब वे रूस के प्रधानमंत्री चुने गए। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने पुतिन को आगे बढ़ाते हुए उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया और अगले ही साल 2000 में पुतिन ने पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता। इसके बाद पुतिन ने रूस में सिलसिलेवार तरीके से धमाके करने वाले चेचेन विद्रोहियों के खिलाफ बेहद आक्रामक तरीके से कार्रवाई की, जिसकी वजह से रूस की जनता ने उन्हें बहुत पसंद किया। और इसी लोकप्रियता पर सवार होकर पुतिन ने साल 2004 में दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता। इसके बाद रूस का संविधान पुतिन की राह में रोड़ा बना और वो चाहकर भी लगातार तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति नहीं बन सके। ये साल 2008 की बात है। तब पुतिन ने इस बाधा का तोड़ निकाला और दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति की कुर्सी देकर खुद प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद रूस की संसद में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। पुतिन तीसरी बार साल 2012 में रूस के राष्ट्रपति बने और उनका कार्यकाल इसी साल पूरा हुआ। लेकिन एक बार फिर चुनाव जीतकर पुतिन ने 2024 तक रूस की सत्ता अपने हाथ में सुनिश्चित कर ली है। पुतिन खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश करते हैं जिन्होंने रूस को 1990 के दशक में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट से बाहर निकाला। पुतिन खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर भी पेश करते हैं जिन्होंने पश्चिमी ताकतों की कथित बुरी नज़र से रूस के हितों की रक्षा की। उनके आलोचकों का कहना है कि सत्ता में आने के बाद पुतिन ने रूस में एक तरह से नई सामंती प्रणाली शुरू कर दी है, जिसमें देश के तमाम आर्थिक संसाधन मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केंद्रित हो गए हैं। शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन के अधिकतर विरोधियों को विदेशों में पनाह लेनी पड़ी और जो ऐसा नहीं कर पाए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यही वजह है कि लोकप्रिय होने के बावजूद रूस में ऐसे कई लोग हैं जो पुतिन को पसंद नहीं करते।
तो सुना आपने, पवन सिंह अतुल बता रहे थे व्लादिमीर पुतिन ने किस तरह रूस की राजनीति में अपने पैर मजबूती से जमाए। यहाँ एक सवाल उठता है कि रूस में पुतिन को एक बार फिर राष्ट्रपति चुने जाने के क्या मायने हैं? क्या इसका ये मतलब है कि रूस में पुतिन से बड़ा कोई दूसरा नेता नहीं है? यही समझने के लिए मैंने अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुक्तदर खान से अब से कुछ देर पहले बात की।
इसके माने ये है कि रूस में कोई बड़ा नेता बचा नहीं। जो उनके सबसे बड़े ओपोनेंट थे उनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और जो बाकी दूसरे ओपोनेंट थे वो या तो डर गए, जिस तरह से आप इजिप्ट में अब देख रहे हैं इलेक्शन, वहां पर भी पीसी के खिलाफ कोई भी नहीं इलेक्शन के लिए खड़ा रह रहा। तो ये दो चीजें की अलामत है। एक तो एक कि ग्लोबली जहां आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी कमजोर होती जा रही है और डेमोक्रेसी के पिलर सारे कमजोर होती जा रही है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पॉपुलिज्म का एक राइज है और वो पॉपुलिज्म आपको नजर आ रहा है, क्योंकि सब जानते थे कि कोई स्ट्रांग ओपोनेंट नहीं था, के बावजूद वोटर टर्न आउट तकरीबन 7% रहा है और जो रिजल्ट अभी आ रहे हैं उससे नजर आ रहा है कि तकरीबन 4 में से 3 रशियंस ने पुतिन के लिए वोट डाला है।
प्रोफेसर मुक्तदर खान, क्या आपको ये नहीं लगता कि दुनिया के कई देशों में इस तरह के नेताओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है जो पिछले कई वर्षों से सत्ता पर काबिज हैं? चीन उनमें से एक देश है, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा, रूस भी अब उसी कड़ी में शामिल हो गया है।
ये जो वेव शुरू हुआ है पॉपुलिज्म का सारी दुनिया में, इंडिया में भी लोग कहते हैं मोदी भक्त, वो एक शख्स की कल्टिश पर्सनैलिटी के भक्त बने हुए हैं। तो इस तरह भक्त बहुत पैदा हो गए हैं दुनिया में। फिलीपींस में ड्यूटर्टे के भक्त बहुत है। तो ऐसे कई अथॉरिटेरियन लीडर्स इमर्ज हो गए हैं जो इलेक्शन भी जीतते हैं। तुर्की में रजब अर्दोगान है। ये इस तरह की जो नई टाइप की लीडरशिप इमर्ज हुई है, तो अब हम वो वेव देख रहे हैं पॉपुलिज्म का, जिससे डेमोक्रेसी को बहुत, यूं कहिए कि डेंजर है, इसकी तरफ से खतरा बहुत है। चाइना ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया था कि जी जिनपिंग परमानेंटली लाइफ टाइम तक वो प्रेसिडेंट रहे, वो भी एक किस्म से एक किस्म के पॉपुलिस्ट अथॉरिटेरियन लीडर बन गए। हम वापस वो 70s-80s का दौर दिखा है मुझे, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैन का एक बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। इसका नतीजा बस यही होगा कि स्कॉलरशिप पर, मीडिया पर, यूनिवर्सिटीज पर, फ्री प्रेस पर और दूसरे जो पिलर्स है डेमोक्रेसी के, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पोलिटिकल एसोसिएशन, इन सारी चीजों पर शायद थोड़ा बहुत रोल बैक होगा। और ये सारी चीजें हमको नजर आती है कि रशिया में तो जरूर कम होगा।
प्रोफेसर मुक्तदर खान, व्लादिमीर पुतिन रूस की राजनीति पर पिछले 18 साल से काबिज हैं और अब अगले 6 साल के लिए उन्हें फिर राष्ट्रपति चुना गया है, तो पिछले 18 साल में रूस की अर्थव्यवस्था पर पुतिन की कोई खास छाप छूटी है, कुछ भला हुआ है रूस का पुतिन के नेतृत्व में?
व्लादिमीर पुतिन की जो लीडरशिप रही है उससे रशिया को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। रशिया की इकोनॉमी सिर्फ इसी बलबूते पे चल रही है कि वो जहां जहां हो सकते वो हथियार बेचने की कोशिश करते हैं, और वो अभी भी दुनिया के कई बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग और एक्सपोर्टिंग नेशन में से एक है। लेकिन उनकी जो इकोनॉमी का साइज है रशिया का, वो इटली से भी छोटा है। तो वो इतनी छोटी इकोनॉमी हो गई है कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि रशिया धीरे धीरे एक ऐसा अजीब सा मुल्क बनते जा रहा है कि हर एरिया में वो एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क बनते जा रहा है, लेकिन सिर्फ हथियारों में और न्यूक्लियर वेपन्स में, साइबर वॉरफेयर और फिजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा जितने मिला के वो वेस्टर्न मुल्कों में हमला किए जा रहे हैं। उसके अलावा उनके पास अब कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, ना तो साइंस ज्यादा तरक्की कर रही है, ना उनकी इकोनॉमी बूम हो रही है। ये जो आप देखते हैं मिडल ईस्ट में दूसरे मुल्कों में जो इंटरवेंशन हो रहे हैं रशिया की तरफ से, वो एक डिफेंसिव पॉस्चर है। वो रशिया का जो इन्फ्लुएंस था रशिया के बाहर वो खत्म होते जा रहा है, उसको बचाने के लिए एक कसम से एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी व्लादिमीर पुतिन अपनाए हुए हैं। इस तरह की इंटरनेशनल बुलिंग कुछ हद तक चल सकती है।
क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रूस की आक्रामकता व्लादिमीर पुतिन की आक्रामकता और ज्यादा बढ़कर नजर आएगी?
इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस दो किस्म का होता है। एक कि आपने ये काबिलियत हो कि आप कोई पॉजिटिव चेंज ला सके, लेकिन रशिया में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो पॉजिटिव चेंज लाने की काबिलियत रखता है इंटरनेशनल स्टेज पर। अलबत्ता वो स्पॉइलर का रोल जरूर प्ले कर सकता है, यानी जब इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी चीज पर कंसेंसस कायम करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो रशिया उस कंसेंसस को सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू या दूसरे स्ट्रैटेजीज के थ्रू वो एक स्पॉइलर के तौर पर वो रोल कर सकता है। जिस तरह से यूक्रेन में अगर आप देखें, कॉकेसस में देखें, अब नया मिडल ईस्ट में जो रोल वो प्ले कर रहा है वो बेसिकली किसी तरह से कंस्ट्रक्टिव नहीं है। बेसिकली यूं कहिए कि वो मजबूर करना चाहता है यूरोपियन यूनियन को कि वो अपने पॉलिसीज बदले।
रूस में फिर चला पुतिन का जादू, एक बार फिर जीता राष्ट्रपति का चुनाव। विश्लेषण कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुक्तदर खान। नमस्कार भारत में आगे सुनेंगे आप पाकिस्तान से बुस्तुल्लाह खान की डायरी और साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी। लेकिन पहले आइए जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां आज क्या बयां कर रही हैं।
जी संदीप जी, कांग्रेस के महाधिवेशन में अध्यक्ष राहुल गांधी का भाषण, उनकी तस्वीर के साथ लगभग सभी अंग्रेजी और हिंदी अखबारों की सुर्खियां बना है। इंडियन एक्सप्रेस की सुर्खी है लड़ाई झूठ बनाम सच जैसे कौरव और पांडव। हिंदुस्तान टाइम्स का शीर्षक है बीजेपी से लड़ने के लिए बनाएंगे एक नई कांग्रेस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है भाजपा कौरवों की तरह लड़ती है और कांग्रेस पांडवों की तरह। अमर उजाला का शीर्षक है कौरवों की तरह सत्ता के मद में चूर भाजपा संग।
किसी ने बताया है कि कौरव पांडवों के बीच धृतराष्ट्र कौन है? और
यही अमर उजाला ने इसी खबर के बराबर में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया भी छापी है और उसका शीर्षक बड़ा दिलचस्प है राम को न मानने वाले पांडव कैसे। जम्मू में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में 3 बच्चों समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत को भी कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। अखबारों ने बुरी तरह से जख्मी एक लड़की की तस्वीर भी इस खबर के साथ प्रकाशित की है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में एम्स के 3 डॉक्टरों की मौत की खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर।
4 डॉक्टर गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं।
जी घायल भी बताए जा रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी में हवाई यात्रा हो सकती है महंगी, मिंट ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। खबर के मुताबिक इंडिगो और गो एयर के 14 विमानों को ग्राउंडेड होने के बाद सीटें घट गई हैं और डिमांड गर्मियों में बढ़ेगी, जिससे एयरलाइंस अपना किराया बढ़ा सकती हैं। मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने चुनाव पूर्व गठबंधन से इनकार किया है, ये खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की। येचुरी का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अन्य पार्टियां एक साथ आ सकती हैं। थमता दिख रहा है आपका तूफान, ये सुर्खी है नवभारत टाइम्स की। खबर के मुताबिक कल दिल्ली में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की आपके विधायकों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब में आपके 20 में से 10 विधायक पहुंचे थे।
मतलब थोड़ा सा बर्फ जो तनाव था कम हो रहा है,
कुछ मामला शांत होता हुआ दिख रहा है। इसरो की 56 वर्षीय महिला वैज्ञानिक मंगला मणि अंटार्कटिका में 403 दिन रहने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये खबर है दैनिक भास्कर की। अंटार्कटिका में तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक,
और क्या नाम बताया आपने इन महिला का,
मंगला मणि, और ये 56 वर्ष की हैं। आखिरी गेंद पर कार्तिक का छक्का, भारत चैंपियन, इस खबर को भी तस्वीर समेत कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापा है।
बहुत शुक्रिया दिनेश उप्रेती समाचार पत्रों की सुर्खियां बताने के लिए। और श्रोताओं, आपने भी महसूस किया होगा कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी खुशी से उतना ज़्यादा खुश नहीं होते जितना कि हम सामने वाले को दुखी देखकर खुश होते हैं, जब वो ख़ास तौर पे हमारा शत्रु हो। कुछ लोगों को लगता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी कुछ इसी तरह के हैं। वस्तुल्ला खान से अपनी डायरी में इस बार इसी विषय को समेटा है।
ये तब की बात है जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। एक वर्ष बाद मुझे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कमरा मिला। पहला काम ये किया कि अपना सामान सेट किया, दूसरा काम ये किया कि श्री देवी के दो पोस्टर सदर जाके खरीदे और उन्हें कमरे की दीवार पे आमने सामने चिपका दिया। ये तब की बात है जब भारतीय फिल्में VCR पे देखना गैर कानूनी था और पकड़े जाने पे 3 से 6 महीने की सज़ा थी। मगर लौंडे कहाँ मानने वाले थे, पैसे जोड़ जाड़ के VCR किराए पे लाते, साथ में 6 फिल्में भी होती, ये मुमकिन ना था कि इनमें से कम अज़ कम 1 या 2 फिल्में श्री देवी की ना हो। जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त, नया कदम, आग और शोला, बलिदान, सल्तनत, मास्टर जी, जाग उठा इंसान, इनकलाब, अकलमंद, नजराना, आखिरी रास्ता, कर्मा, मकसद, सुहागन, निगाहें, जांबाज, तोहफा, घर संसार, औलाद, सदमा, हिम्मत वाला, नगीना, मिस्टर इंडिया, चांदनी। श्री देवी की गैरकानूनी भारतीय फिल्में, और वो भी हॉस्टल के हॉल में सब दरवाजे खिड़कियां खोल के फुल वॉल्यूम के साथ देखना ताकि हॉस्टल के बाहर बनी पुलिस चौकी तक भी आवाज़ पहुंच जाए, ये था हमारा प्रतिरोध ज़िया की तानाशाही के खिलाफ। कभी कभी पुलिस वाले दबी दबी जबान में हंसते हुए कहते, हम तुम्हारी भावनाएं समझते हैं पर आवाज़ थोड़ी कम कर लिया करो, कोई टेढ़ा अफसर आ गया तो हमारी पेटियां उतरते देख के तुम्हें अच्छा लगेगा क्या। इन सिपाहियों की जगह हर 3 महीने बाद नए सिपाही आ जाते, पर एक सिपाही मुझे याद है, शायद जमील नाम था, स्पेशल ब्रांच का था इसलिए वर्दी नहीं पहनता था। हॉस्टल की पुलिस चौकी पे 1 वर्ष से जायद नियुक्त रहा। जब उसने अपने ट्रांसफ़र का बताया तो हम 4-6 लड़कों ने कहा, जमील आज तुम्हारी हॉस्टल की कैंटीन में दावत करते हैं। कहने लगा, दावत छोड़ो, श्री देवी की कोई फिल्म दिखा दो। उस रात सिपाही जमील को सम्मान देने के लिए जस्टिस चौधरी मंगवाई गई और पूरे सम्मान के साथ देखी गई। आज मैं 30-35 वर्ष बाद सोच रहा हूँ कि अगर श्री देवी ना होती तो जनरल ज़िया की 10 वर्ष पे फैली घुप तानाशाही हम लड़के बाले कैसे काटते। मैंने श्री देवी की आखिरी फिल्म चांदनी देखी, जिंदगी फिर जाने कहाँ से कहाँ ले गई। श्री देवी को भी शायद पता चल गया था, इसलिए 90 के दशक में वो भी शाम के सूरज की तरह आहिस्ता आहिस्ता नज़रों से ओझल होती चली गई। मैंने सुना कि इंग्लिश बहुत अच्छी फिल्म थी, फिर सुना कि मॉम में श्री देवी ने कमाल का काम दिखाया, और कल तो श्री देवी ने कमाल ही कर दिया। मगर मुझे ना कोई दुख है ना हैरत। वॉन गॉफ के बारे में सुना है कि जब उसे अपनी कोई पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती तो वो उसे फाड़ दिया करता था। कल भी शायद यही हुआ, श्री देवी की पेंटिंग शायद बनाने वाले को ज़्यादा ही भाग गई।
श्रोताओं से यहाँ हम माफ़ी चाहेंगे, वस्तुल्ला खान की पुरानी डायरी तकनीकी खामी की वजह से प्रसारित हो गई, इसके लिए हम आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे। और अब साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त।
But what has Dinesh Karthik achieved?
कल दिनेश कार्तिक के केवल 8 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से बनाए गए नाबाद 29 रनों की मदद से भारत ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हराकर निदहास 2020 ट्रॉफी का फाइनल अपने नाम किया। भारत के सामने जीत के लिए 167 रनों का लक्ष्य था। आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी और दिनेश कार्तिक ने छक्का लगाकर भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ा दी। इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा ने 56, मनीष पांडे ने 28 और KL राहुल ने 24 रनों की पारी खेली। आखिरी 3 ओवर में भारत को जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीता और बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी की दावत दी। बांग्लादेश ने शब्बीर रहमान के 77 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 166 रन बनाए। जयदेव उनादकट ने 33 रन देकर 2 और युजवेंद्र चहल ने 18 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। मैच समाप्त होने के बाद दिनेश कार्तिक ने सारा श्रेय विनम्रता के साथ टीम को समर्पित किया।
इंडिया नीडेड 34 ऑफ 12 व्हेन ही वॉक्ड आउट। हीरो ऑफ द मैच दिनेश कार्तिक।
थैंक यू सो मच। I was really happy to come out of this performance. So really happy for the team. Young bunch of boys. We've played some good cricket throughout the tournament, and not won this final wouldn't have done justice to the way we've played this tournament. So really happy with the way we've played this tournament.
Many congratulations to the Indian team for having achieved that.
लेकिन ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने कल वडोदरा में खेले गए तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय महिला टीम को 97 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने ये एक दिवसीय सीरीज 3-0 से अपने नाम की। और अब समीक्षा। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड को चलाएगा कौन? दरअसल ये यक्ष प्रश्न पिछले दिनों तब उठा जब BCCI में सुधार के लिए बनी प्रशासकों की समिति के प्रमुख विनोद राय ने BCCI के कार्यकारी अध्यक्ष CK खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी के सारे अधिकार छीन लिए। अब ये कार्यकारी अधिकारी BCCI से जुड़ा कोई नीतिगत बड़ा फैसला नहीं ले सकते। अगर इन्हें यात्रा करनी है तो खर्चे के लिए अनुमति लेनी होगी, उप समिति की बैठक के लिए नोटिस देना होगा, बाहरी कानूनी सलाह के लिए भी ये खर्च नहीं कर सकते। वैसे माना जा रहा है कि पिछले दिनों क्रिकेटरों के कॉन्ट्रैक्ट पर सचिव अमिताभ चौधरी के दस्तखत से इनकार करने के बाद हालात बिगड़े। इन्हीं बिगड़े हालात को लेकर क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली कहते हैं,
अगर आप देखें COA का पहला काम था कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए, वो अभी तक नहीं हो पाया है। उन्होंने साफ स्टेटस रिपोर्ट दे चुके हैं। उनका कहना यह है कि ये जो ऑफिस बेयरर्स है इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो इनको हटना पड़ेगा। और COA का काम BCCI को तो चलाना नहीं था, इसलिए तो आपको BCCI के अधिकारी चाहिए होंगे। मतलब मैं तो ये मान नहीं सकता हूँ कि केवल 2 अधिकारी BCCI को चलाएंगे। BCCI का इतना बड़ा काम है, पर इससे बहुत खराब मैसेज जा रहा है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आज इस स्तर पर पहुंच गया है कि अधिकारी केवल और केवल लड़ाई चल रही है उनके आपस में। पर अगर ये तीनों अधिकारी हट जाएंगे तो फिर मुझे देखना है कि कितनी जल्दी COA कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये कहूंगा सुप्रीम कोर्ट कितनी जल्दी आदेश देता है कि सब कुछ ठीक से चले।
तो क्या BCCI अदालत जा सकती है और प्रशासकों की समिति इसके आगे क्या कदम उठाएगी? एक और क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
सुप्रीम कोर्ट के जो रिकमेंडेशन से लोधा कमेटी के जो अब तक इनकार कर रहे थे या उसके इम्प्लीमेंट करने में पूरी कोशिश नहीं कर रहे थे, वो अब उन्हें शायद करना ही पड़ेगा, या फिर से वो अपील में जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आप अपील में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर उसके खिलाफ अपील करने के लिए आप आर्ग्यूमेंट पेश कर सकते हैं। और जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये COA के जो हेड है विनोद राय, जून जुलाई तक शायद उनका भी टर्म खत्म हो जाएगा, उसके पहले ही वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने ऑर्डर्स है वो पूरा इम्प्लीमेंट कर दे।
अगर ये पहली जून जुलाई तक सुलझ जाए तो इससे बेहतर शायद ही कुछ हो, लेकिन इसके सुलझने का सिरा कब हाथ आता है अभी तो इसका इंतजार है। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और इसके साथ ही भारत में बजने वाले हैं सुबह के 7। वक्त बचा नहीं है मुख्य समाचारों का। नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार, और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया अभिमन्यु साह ने। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे। संदीप सोनी को दीजिए इजाजत।